اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں، تیرا کیا کام ہے، کیا ہے تیری حقیقت جو گم نام ہے، تجھ پہ خود کو چھپانے کا الزام ہے،
शांति ओम शांति ओम शांति। बहुत सुंदर अभी हम सभी ने ये गीत सुना कि खुदा तू बता दे तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तू रहता कहाँ है, ये दुनिया बनाने का तेरा मकसद क्या है। कितने सारे सवाल थे और शायद आज हर मनुष्य के मन में ये सारे सवाल है ईश्वर के प्रति, क्योंकि जहां तक आत्मा का विषय आता है वहां तक तो फिर भी एक ही मान्यता होती है कि हर कोई आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है कि शरीर में चैतन्य शक्ति आत्मा है, चाहे उसको किसी ने सोल कहा, आत्मा कहा, रूह कहा, शक्ति कहा, लेकिन है उस चैतन्य शक्ति की ओर इशारा। परंतु जहां परमात्मा का विषय आता है वहां संसार में इतने मत मतांतर है, जो मनुष्य इतना कंफ्यूज हो गया है कि आखिर भी सत्य क्या है। एक बार एक बहन ने मुझे कहा कि उसका बेटा 17 साल का है और वो अपनी माँ से पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है। वो माँ उस बच्चे को समझाने का प्रयत्न करती है कि हाँ हिंदू धर्म में ये सारे भगवान हैं। वो बच्चा अपनी समझ से कहता भगवान तो एक होना चाहिए ना, इतने सारे भगवान थोड़ी हो सकता है। और अगर ये सारे भगवान हैं तो इन सबका हेड कौन है। परिवार में भी एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो ये सारे भगवानों का हेड कौन है। वो माँ उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती और इसीलिए जब भी वो माँ अपने बच्चे से कहती है बेटा मंदिर चलो, वो बच्चा मना कर देता है कि मंदिर जाने के बाद आई गेट सो कंफ्यूज्ड, वेयर शुड आई कॉन्सेंट्रेट माई माइंड, किस में एकाग्र करूं। इसलिए उसको लगता है कि आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, मैं मंदिर क्यों जाऊं, मेरा मन तो लगता नहीं है। सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है, लेकिन वो सत्य क्या है उसको अगर हमने ही नहीं जाना तो आने वाली जनरेशन को हम क्या गाइड कर सकेंगे। वो कहानी याद आती है कि एक बार एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण का बेटा बीमार हुआ, डॉक्टर के पास लेकर के गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब भगवान बचाए, इसका इलाज हमारे पास नहीं है। ब्राह्मण श्री कृष्ण का भक्त था, उसने श्री कृष्ण की पूजा आरंभ कर दी है, प्रभु मेरे बच्चे को बचा लो, हे कान्हा मेरे बच्चे को बचा लो। 2 दिन तक लगातार उसकी पूजा करता रहा। 2 दिन के बाद एक पड़ोसी आकर कहता है अरे तू कब से श्री कृष्ण को पुकार रहा है, लेकिन ऐसे समय में श्री कृष्ण को थोड़ी पुकारना होता है। का फिर कैसे समय में माँ की पूजा करनी चाहिए, माँ का हृदय करुणा वाला होता है, तो माँ की भक्ति कर, देख वो तेरा बच्चे को बचा लेंगी। उसको भी लगा बात तो सही है, उसने माँ की भक्ति आरंभ कर दी, हे माँ मेरे बच्चे को बचा ले। दो दिन तक लगातार माँ की भक्ति करता रहा। वहां एक और पड़ोसी आकर कहने लगा, अरे ऐसे समय पर माँ को थोड़ी पुकारना होता है। का फिर करे विघ्नहर्ता तो गणेश जी है ना, तो गणेश जी को याद कर दे कि विघ्न टल जाएगा। उसको भी लगा हाँ बात तो सही है, उसने गणेश जी की पूजा आरंभ कर दी। दो दिन तक लगातार गणेश जी की पूजा करता रहा। वहां एक और पड़ोसी आकर कहने लगा, अरे गायत्री मंत्र कर देख चमत्कार होगा। उसको भी लगा सुना तो है, चलो गायत्री मंत्र करते हैं। गायत्री मंत्र आरंभ कर दिया। दो दिन तक गायत्री मंत्र करता रहा। वहां एक मित्र संबंधी आकर कहने लगा, कह रहे संकट मोचन तो हनुमान जी है, तू हनुमान चालीसा कर, देखिए संकट टल जाएगा। उसने हनुमान चालीसा शुरू किया। वहां एक संबंधी आकर उसको कहने लगा, अरे पड़ोस के गांव में एक बाबा जी है, ऐसी बभूति देते हैं जो असाध्य बीमारी ठीक हो जाती है, चलो बच्चे को लेकर वहां चलते हैं। लेकर गए, बभूति खिलाई, घर आए, दो दिन के बाद बच्चा मर गया। कारण क्या हुआ? कारण क्या हुआ? इतने भगवानों को याद किया, क्यों किसी ने मदद नहीं किया? कारण क्या हुआ? कंफ्यूज्ड। एक को रखता तो तार लेते थे। हाँ, कहीं हमारी हालत भी ऐसी तो नहीं है? विश्वास ही नहीं था। जिसने जो कहा वैसे कर लिया, कि इसको विश्वास कहेंगे क्या? यही विश्वास है। और इसलिए आज हमारे मंदिरों में सारे देवी देवताओं के मूर्तियां रखी हुई होती है, सबके आगे दिया बत्ती अगरबत्ती दिखा रहे हैं। अंत में यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब में जो सही हो प्लीज मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेना। क्या ये विश्वास है? घर के छोटे से मंदिर में भी सारे फोटो लगे हुए होते हैं। जहां गए जिसने जो फोटो दिया लगा दिया, जो फोटो दिया लगा दिया, सबके आगे दिया बत्ती अगरबत्ती कर रहे हैं। ये विश्वास है। और अगर ऐसा ही विश्वास रहा तो क्या हम भी अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं? जब विश्वास ही नहीं है तो समय वेस्ट है ना। प्राप्ति तो कुछ होने वाली नहीं है उसमें, तो कम से कम अब तो इस आधुनिक युग में सत्य को तो समझे कि आखिर सत्य क्या है। नहीं तो जैसे एक बार एक कार्टून देखा कि जिसमें एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम आती है हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा है। पहली कॉलम में लिखा है नेचर इज गॉड, प्रकृति परमेश्वर है। दूसरी कॉलम में लिखा है आत्मा सो परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि। तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है। चौथी कॉलम में लिखा है कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सब में ईश्वर है। पांचवी कॉलम में लिखा है निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है। छठी कॉलम में लिखा है साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवता है सब परमात्मा है। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा है देयर इज नथिंग लाइक गॉड। अगर भगवान है तो सबूत दो, प्रूव इट। अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सारी कॉलम पढ़ने के बाद उसने क्या डिसीशन लिया होगा? सत्य क्या है? किसको सत्य कहे? क्या ये सभी सत्य हैं? इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हमने समझा ही नहीं है, क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? क्या ये सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है? वो कहानी याद आती है कि एक बार 5 सूरदास थे, उन्हें कहा गया हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी को डिस्क्राइब कर दिया। एक के हाथ में पैर आए तो कहा हाथी खंभे जैसा है, पीठ आई तो कहा दीवार जैसा है, पूंछ आई तो कहा रस्सी जैसा है, सूंड आई तो कहा सांप जैसा है, और कान आए तो कहा सूप जैसा है। आखिर सत्य क्या है? क्या ये सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है, या सत्य कुछ और है जिसको वो देख नहीं पा रहे थे, क्या कहेंगे? हाँ, सबको मिला दो तो सत्य हो जाएगा, दीवार को, खंभे को, रस्सी को मिला दो तो सत्य हो जाएगा। पकड़ा किसको है? क्या ये सब मिला देने से, खंभे को, दीवार को, रस्सी को, सांप को मिला देने से हाथी बन जाएगा? यहां तक तो कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन इस कहानी को मैं थोड़ा आगे ले जाती हूं कि मान लो कि ये पांचों सूरदासों को कहा जाए कि एक छठा सूरदास दूर बैठा है, आपने जो समझा उसको जाकर बताना है हाथी कैसा है। अब ये वन बाय वन गए, पहला जाकर कहता है देख भाई हाथी एक ऐसा प्राणी है जो लंबा लंबा खंभे जैसा है। थोड़ी देर के बाद दूसरा जाकर कहता है देख भाई हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सीधा सीधा दीवार जैसा है। थोड़ी देर के बाद तीसरा जाकर कहता है देख भाई हाथी एक ऐसा प्राणी है जो गोल गोल रस्सी जैसा है। चौथा जाकर कहता है देख भाई हाथी एक ऐसा प्राणी है जो एकदम लचीला सांप जैसा है। और पांचवा जाकर कहता है देख भाई हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सूप जैसा या पंखे जैसा है। पांचों की बातें सुनने के बाद ये छठा सूरदास क्या समझेगा कि आखिर हाथी कैसा है? फिर भी विश्वास कर लेता है कि भाई पांच ने तो महसूस किया ना, होगा कोई ऐसा प्राणी, विश्वास कर लेता है। अब ये छठे सूरदास को कहा जाता है एक सातवां सूरदास और दूर बैठा है, आपने जो समझा उसको जाकर बताना है कि हाथी कैसा है। अब ये छठा सूरदास सातवें सूरदास के पास जाता है और कहता है देख भाई हाथी कैसा है मैंने तो महसूस नहीं किया, लेकिन पांच ने जो महसूस किया उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं तुझे बताता कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। कभी तो वो खंभे जैसा हो जाता, कभी तो वो दीवार जैसा हो जाता, कभी तो वो रस्सी जैसा हो जाता, कभी वो सांप जैसा हो जाता, कभी वो पंखे जैसा हो जाता है। सातवां सूरदास जिसका आईक्यू लेवल हाई था वो कहता है कैसे हो सकता है, कोई प्राणी रंग बदल सकता है लेकिन पूरा स्केलेटन का ढांचा ही बदल दे, हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? तू एक बात कर, एंड हाउ कैन यू बिलीव दिस? तो छठा सूरदास क्या कहता है, पांच ने महसूस किया ना, वो झूठ थोड़ी बोलते, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। वो क्या कहता है, आई डोंट बिलीव दिस। कहीं हमारी हालत भी ऐसी तो नहीं हुई, हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी समझ से या अपनी साधना की शक्ति से ईश्वर के कोई गुण को महसूस किया और उन्होंने मनुष्य को बताना चाहा। तो ऋषि मुनियों ने जब नहीं समझ पाए तो क्या कहा, नेति नेति, न ये है न वो है, नेति नेति, हम नहीं समझ पाए उसको, ऋषि मुनियों ने ये कहा। लेकिन उसके बाद मिडिल एज जैसे आया, डार्विन की थियरी शुरू हुई, तो कहां पहले अमीबा था न उसके बाद समुद्र में लाइफ शुरू हुई, न समुद्र से लैंड पर हुई। तो हिंदू धर्म शास्त्र ने 10 अवतार बता दिए कि पहले मच्छ अवतार, न कच्छ अवतार ने, फिर धीरे धीरे जमीन पर आए, न वारा अवतार, न फिर मनुष्य स्वरूप धारण किया तो वामन अवतार, न फिर ये सारे अवतार, 10 अवतार बता दिए डार्विन की थियरी के आधार पर, ताकि मनुष्य का मन कहीं ये विज्ञान के आधार पर भटक न जाए और कहीं धर्म छूट न जाए या धर्म ही न हो जाए, इसलिए 10 अवतार बता दिए। उसके बाद जब बौद्ध धर्म में लोगों का परिवर्तन होने लगा, काफी लोग बौद्ध धर्म में जाने लगे, उनको अटकाने के लिए शंकराचार्य ने कह दिया, ये 10 अवतार में महात्मा बुद्ध भी है, इस महात्मा बुद्ध का भी एक अवतार बता दिया कि ये हिंदू धर्म का ही है, तो वहां से कन्वर्जन को रोक दिया गया। उसके बाद लोगों का विश्वास कहीं ये न हो जाए फिर से, इसलिए कहा 24 अवतार है, 24, 10 में से 24 हो गया। उसको भी लोगों ने स्वीकार कर लिया, भाई शास्त्रों ने कहा है, अमेंडमेंट होते रहे। और उसके बाद कहा, कण कण में भगवान कहां नहीं है, हर एक में ईश्वर है, हर एक चीज में ईश्वर है, जहां देखूं वहां तू ही तू। अब इन सब में सत्य क्या है, नेति नेति वो सत्य है, 10 अवतार सही है, 24 अवतार सही है, या कण कण में भगवान ये सही है। अब आपका विवेक क्या कहता है बताइए, हाँ आपका विवेक क्या कहता है, सत्य क्या है। ज्ञान के दिव्य चक्षु किसी के पास नहीं है, सब नैनहीन ही है सूरदास की तरह, और इसलिए जिसने जो कहा उसको मान लिया। अब यंग जनरेशन पूछती है, इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं, कैन यू प्रूव इट, तो क्या कहते हैं, भाई ऋषि मुनियों ने कहा है, शास्त्रों ने, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है छोड़ दो। ये हाल हो गया है आज हमारा। ये नहीं कि अब क्या ब्रह्मा कुमारी जो बताएंगी उसको मानना है हमें, नहीं, हम आपको मत नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इतनी सारी मतें हैं, ऑलरेडी इतने कंफ्यूज स्टेज में है कि हम और ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहते। लेकिन आज हम आपको एक कसौटी देंगे जिस पर आप अपनी मत को कसकर देखो सत्य है, नहीं तो सत्य को प्राप्त करो, समझो। तो वो सत्य क्या है, सबसे पहली बात कि ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है, गॉड इज वन। तो जिसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस प्राप्त हो ईश्वर के रूप में उसको कहेंगे परमेश्वर, राइट। दूसरा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो, उसको कहेंगे ईश्वर। उसका कोई माता पिता नहीं हो सकता है, उसका कोई रक्षक नहीं हो सकता है, उसका कोई शिक्षक नहीं हो सकता है, वो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक है। तीसरा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोपरि हो, अर्थात मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, जन्म और मृत्यु का चक्र, देह और देह के संबंधों का चक्र, कर्म और कर्म का फल का चक्र, पाप और पुण्य का चक्र, सुख और दुख का चक्र, ये सब चक्र में हम आते हैं। ईश्वर इन सभी चक्रों से ऊपर है, इज बियॉन्ड। चौथा परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के तीनों कालों का ज्ञान है, त्रिकालदर्शी, जो मनुष्य को ज्ञान के दिव्य चक्षु देने वाले हैं। फिर जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, त्रिदेव है, ये तीन की महिमा उसी के साथ जाती है, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति, त्रिदेव। और पांचवा परमेश्वर उनको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, जिसके लिए मां शारदा ने कहा सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ और स्वयं मां सरस्वती बैठकर ईश्वर की महिमा लिखे तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा। ये पांच बातें हैं कसौटी, उस पर एक एक मत को कसकर देखो सत्य है नहीं तो सत्य को प्राप्त करो। सबसे पहली बात जब हम कहते प्रकृति परमेश्वर है, क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? क्या प्रकृति को सर्वोच्च सत्ता कहेंगे? किसी कवि ने बहुत सुंदर यह गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा, वो चित्रकार कौन है? अब सत्य क्या है? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? हाँ, रचना है कहना सत्य है। तो इसका मतलब प्रकृति को परमेश्वर मानना यह अज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस, जो कह दिया सत्य तो नहीं है, असत्य था। ये बात क्लियर हो गई सबको? क्लियर हो गई? आगे बढ़े तो पहली बात, प्रकृति परमेश्वर नहीं है, राइट। दूसरी बात, जब हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि, ये कहां तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर मंदिरों में जाकर हमने ये क्यों गाया, तुम मात पिता हम बालक तेरे? अब सत्य क्या है, हम ही परमात्मा है या हम उस परमात्मा की संतान है? क्या कहेंगे? संतान है कहना ठीक है, तो अहम ब्रह्मास्मि कहना गलत है। इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस। हम उस परमात्मा की संतान है तो परमात्मा तो नहीं है ना। क्लियर? आगे बढ़े। कई बार कई लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, जीवन में अगर हमने पुरुषार्थ किया तो हम परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है। आज इंसान अपने जीवन में कोई भी पुरुषार्थ करे, कोई भी क्षेत्र में, तो उस पोस्ट पोजीशन सीट को प्राप्त कर सकता है, हासिल कर सकता है। लेकिन कोई भी इंसान खुद का बाप बन सकता है? बन सकता है? अगर परमात्मा हमारा पिता है, हम उसकी संतान है, तो हम खुद का बाप कैसे बन सकते? सोचने की बात है। तो अहम ब्रह्मास्मि अज्ञान है, और इसीलिए मनुष्य ने जैसा कर्म किया वैसा टाइटल जरूर मिला। किसी ने पुण्य कर्म किया तो कहेंगे पुण्यात्मा है, महान कर्म किया तो कहेंगे महात्मा है, धर्म का काम किया तो कहेंगे धर्मात्मा है, दिव्य कर्म किया तो कहेंगे देवात्मा है। तो देवात्मा अनेक है, धर्मात्मा अनेक है, महात्मा अनेक है, पुण्यात्मा अनेक है, पापात्मा अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। ग्रामर में परमात्माएं ये शब्द नहीं आता है। गॉड इज वन। और ये सब आत्माएं हैं। पुण्य आत्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा, महान आत्मा महान परमात्मा भी नहीं कहा, धर्म आत्मा धर्म परमात्मा भी नहीं कहा, देव आत्मा देव परमात्मा भी नहीं कहा। और भारत में देव आत्माएं भी कितने हैं? 33 करोड़ देवी देवताएं। सब देव आत्माएं, देव परमात्मा कोई भी नहीं है। गॉड इज वन। कई बार कई लोग क्या सोचते हैं, अरे एग्जाम्पल देते हैं, अरे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ऐसे एक बड़ा परमात्मा है, उसके टुकड़े टुकड़े अंश होकर के हम इस संसार में आए और अंत में जाकर उसी में विलीन हो जाना है, परमात्मा बन जाना है। अब ये कहां तक सत्य है? सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है, क्योंकि वो मैटर है। मैटर मैटर में मिल सकता है, लेकिन आत्मा या परमात्मा मैटर नहीं है, शक्ति है। और शक्ति के लिए यही कहा जाता है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉ डिस्ट्रॉइड। आत्मा के लिए यही शास्त्रों में कहा गया है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये कहा है, अजर माना जर्जर भी नहीं होती है, अमर माना मरती भी नहीं है, अविनाशी इतना स्पष्ट किया है कि जिसके अस्तित्व का कभी विनाश नहीं होता है। सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, तो वो बुदबुदे का अस्तित्व समाप्त हो गया, बुदबुदा बुदबुदा नहीं रहा, सागर बन गया। लेकिन आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, अविनाशी है, अविनाशी है। इसलिए ये एग्जाम्पल बैठता ही नहीं है। फर्स्ट प्लेस में ये एग्जाम्पल एक मैटर का और एक शक्ति का दोनों का समन्वय नहीं हो सकता है, सिमिलैरिटी है ही नहीं। वो मैटर है, ये शक्ति है। तो सत्य क्या है? आत्मा परमात्मा का अंश है कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा का वंश है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? हाँ, वंश है ना, अंश तो नहीं है ना, टुकड़े तो नहीं है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। एनी क्वेश्चन? नहीं। तीसरी बात, जब हम कहते हैं ब्रह्म ईश्वर है, अब अज्ञानता के कारण हम दो दो बातें करते आए, एक तरफ का ब्रह्म ईश्वर है, दूसरी तरफ ईश्वर की महिमा में गाते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर। अब सत्य क्या है? ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है, या पार ब्रह्म परमेश्वर, पार पांच तत्वों की दुनिया से पार छठा तत्व जो ब्रह्म महातत्व है, उस महातत्व में निवास करने वाला ईश्वर, सत्य क्या है? ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है, या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है? पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है। तो ब्रह्म ईश्वर है कहना असत्य है, अज्ञान है, गलत है, राइट? क्लियर? एक एक बात क्लियर हो रही है ना? कहां हम गलती करते हैं, कितनी अज्ञानता में थे। चौथी बात कहते हैं कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सब में ईश्वर है, जहां देखूं वहीं तू ही तू है। अब ये कहां तक सत्य है? क्या सचमुच इतनी ऊंचे ते ऊंची हस्ती परमात्मा कूड़ा कचरा गंद गटर सब में है? कण कण में माना सब में हो गया ना, तो कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान हो सकता है? क्या आपका विवेक इस बात को स्वीकार करता है? तो सर्वव्यापी कहेंगे, तब मनुष्य क्या कहता है? नहीं, सभी मनुष्य में आत्मा भी और परमात्मा भी बाजू में बैठा है, हर एक प्राणी में आत्मा भी है परमात्मा भी बाजू में बैठा है। अगर हर एक में आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा हो और एक व्यक्ति दूसरे का खून करे, तो ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? क्या कहेंगे, आत्मा का या परमात्मा का? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है तो उस वक्त परमात्मा अंदर बैठ के क्या कर रहा था? क्या ईश्वर के पास, सर्वशक्तिमान के पास इतनी शक्ति नहीं जो एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके? और अगर नहीं है तो क्यों बैठा है? बैठने का कोई मतलब? आज घर में बच्चे होते हैं, बच्चे किसी बात को लेकर आपस में लड़े और माँ बाप सामने बैठे हैं तो देखते रहेंगे कि उसका कर्म वो जाने या छुड़ाएंगे? क्या करेंगे? छुड़ाएंगे ना। एक शारीरिक माता पिता भी बच्चों को आपस में लड़ते हुए नहीं देख सकता है, तो वो तो परमात्मा है, दया का सागर, करुणा का सागर, प्यार का सागर, और मनुष्य इतना गलत काम कर रहा है, क्या वो देख सकता है और कुछ न कहे? ऐसा हो सकता है? तो बैठने का कोई मतलब है? कोई मतलब? आज देखो, कोई हमें कोई बात पूछता है या बताता है, हमें मालूम नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं? अरे ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में फंसते हो? कहते हैं ना, गलती से भी कहा नीचे वाला जाने, हमेशा यही निकला ऊपर वाला जाने। फिर ये ऊपर वाला कौन है और नीचे वाला कौन है? वो एक ही है या अलग है? हाँ, सही कौन सा है, ऊपर वाला है नीचे वाला है? ऊपर वाला है। अनजानेपन में भी हमारे मुख से यही निकला ऊपर वाला। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में जब ये आता है, यदा यदा ही धर्मस्य भावार्थ, के जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान ने वायदा दिया, मैं आता हूँ। अब गीता के ये महावाक्य सत्य है या ये जो मनुष्य कहते हैं कण कण में व्यापक वो सत्य है? अगर भगवान सर्वव्यापी है तो पहली बात, इतना अधर्म होना ही नहीं चाहिए। अगर इतना अधर्म हुआ तो इसका मतलब नहीं होगा, तभी तो हुआ, तभी तो वो आएगा। अगर वो यही है तो कौन आएगा? कितने सारे सवाल है। आज देखो प्रकृति में भी ये विशेषता है कि अग्नि के अंदर लोहा रखो तो अग्नि का गुण लोहे में आ जाएगा, एकदम लाल और गर्म हो जाएगा, संग का रंग, संग का रंग। आज मनुष्य भी थोड़े दिन किसी के संग में रहे ना तो उसको भी संग का रंग लग जाता है। अरे मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षी को भी संग का रंग लग जाता है। वो परमात्मा अगर बाजू में बैठा है, पारस वो बाजू में बैठा है और एक भी गुण हमारे में ना आए, ऐसा हो सकता है? गुणों में अनंत है और एक भी गुण हमारे में ना आए, ऐसा हो सकता है? लेकिन तब फिर बात आती है कि सर्वव्यापकता की बात भी तो शास्त्रों में ही कही गई है। क्या शास्त्र गलत है? शास्त्र गलत है नहीं, लेकिन ये तो हो सकता है कि शास्त्रों में जिस भाव से लिखा गया है उसको हमने समझा ही ना हो, ये तो हो सकता है ना। अब शास्त्र किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने लिखे। और ऋषि मुनियों ने किस बेसिस पर ये शास्त्र लिखे? अनुभव के बेसिस पर। कहा जाता है कि उस समय के जो ऋषि मुनि थे बड़े सिद्ध थे, जब साधना में बैठते थे तो देवर एबल टू ट्रेवल थ्रू टाइम, समय के अंतराल से गुजर सकते थे। और जब वो कली काल को देखते थे कि कलयुग जब आएगा तो घोर पाप कर्म होगा, अब मनुष्य को पाप कर्म से बचाएं कैसे, तब उन्होंने लिख दिया ये बात शास्त्र में कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना कि तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सब जगह है, वो तुझे देख रहा है, ताकि मनुष्य को एक डर रहे और पाप कर्म न करे। इसलिए ये बात शास्त्रों में लिखी गई। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब घुटना करना सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है, और उस समय माँ को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कहीं रास्ते पर ना निकल जाए, तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाकर कहेगी देख बाहर गया ना, वो कुत्ता उठा के ले जाएगा, डर बिठाया ताकि बच्चा घर के अंदर खेलता रहे, बाहर गलती से भी ना जाए। और इसीलिए वो बच्चा घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता भी है, जैसे ही कुत्ता और गाय को देखेगा क्या करेगा, वापस जल्दी जल्दी आ जाएगा अंदर और खुश होता है, आई एम सेफ, ये प्रकट करता है आई एम सेफ। लेकिन वही बच्चा 4-5 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा, क्या कहेगा, हंसेगा अपनी माँ पर, कहेगा कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला है क्या? लेकिन उसी बात को उसने सत्य मान लिया था। लेकिन समझदार होने के बाद हंसते हुए निकल जाता है और बाहर जाकर कुत्ते के बच्चे को उठा के घर में लाएगा, कहेगा लो मैं लेके आया, वो क्या मुझे ले जाएगा, कहेगा कि नहीं कहेगा। ठीक इसी तरह शास्त्र में जब ये बात आई तो मनुष्य डरता था पाप करने से, कोई अगर उसको प्रेरित भी करता था पाप करने के लिए तो क्या कहता था, अरे बाल बच्चे वाला, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, मना कर देता था। ऊपर वाला भी देख रहा है, मना कर देता था। लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया, और इसलिए कोई अगर उसको कहता भी है अरे क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है, वही डायलॉग, बाल बच्चे वाला, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा, कहता है ना। पहले वही डर था, लेकिन आज डर खत्म, बड़ा हो गया, समझदार जो हो गया, और इसलिए वो डर भी नहीं रहा और कलयुग का प्रभाव होकर के ही रहा, पाप कर्म करते ही जाता है। लेकिन वो बात याद आती है वाल्मीकि ऋषि की, कि वाल्मीकि भी एक लुटेरा था, अपने परिवार के पेट को पालने के लिए ही वो लूटता था लोगों को। लेकिन जब एक महात्मा ने उसको कहा कि भाई पहले परिवार वाले से पूछ के तो आ कि तेरे पाप में भागीदार बनेंगे, उसका फल भोगने का समय आएगा तो भागीदार बनेंगे, तो परिवार वालों ने क्या कहा, हम नहीं बनेंगे, तू पाप कर रहा है तू भोगना। उसने उसके जीवन को परिवर्तन कर दिया। आज जो मनुष्य पाप करता है अपने परिवार को पालने के लिए, उनका पेट भरने के लिए, आज मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्या आपका परिवार उस पाप में भागीदार बनेगा? बनेगा? जिसके लिए आप पाप कर रहे हैं, क्या वो परिवार आपके पाप में भागीदार बनेगा? नहीं, बच्चे मना कर रहे हैं, बच्चे मना कर रहे हैं, हम नहीं बनेंगे। क्या फिर भी पाप करते ही जाना है? बच्चे के बच्चे क्या खाएंगे, पोते क्या खाएंगे, उसके बच्चे क्या खाएंगे, उसके लिए इकट्ठा करना है? अरे आपके पाप में कोई भागीदार बनने वाला नहीं है। सोचने की बात है। इसलिए कम से कम जीवन के अंदर अब इतना पुण्य करो जो आगे की यात्रा में कम से कम अपने अच्छे कर्मों का सुखदायी जीवन व्यतीत कर सको, है कि नहीं? नहीं तो वो कहानी याद आती है कि एक बार एक सेठ जी था, उसको 3 बेटे थे। तीसरे बेटे की जब शादी हुई तो सेठ जी का नियम था कि दान नहीं करना, कभी भी कोई भी आए दान नहीं करना। अब जो है तीसरी बहू जब आई तो उसको पहले दिन ही बता दिया गया कि भाई सेठ जी का कायदा है दान नहीं करना। अब जिस परिवार से वो आती थी उसके पिता ने उसको सिखाया था कि बेटा जिसको भी जरूरतमंद हो दान करना, अच्छे कर्म करना, अब दान ही नहीं करना, ये कैसा कायदा, ठीक है भाई नहीं करेंगे। कुछ दिन बीत गए, 6 महीना साल भर होने को आया, तीसरी बहू एक दिन कपड़े सुखा रही थी गैलरी में के नीचे गेट पर एक भिखारी आया और भिखारी ने आवाज लगाई, 3 जन्म का भूखा हूं कुछ दे दो। तो बहू पर जो कपड़ा सुखा रही थी उसने जवाब में उसको कहा, बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। भिखारी चला गया। अब सेठ जी नीचे पेपर पढ़ रहे थे, उसने जब ये बात सुनी तो कहा, बासी खाना खा रहे हैं और कल उपवास करेंगे, किस दिन हमने बहू को बासी खाना खिलाया, किस दिन उसको उपवास करने के लिए कहा, ये तो हमें बदनाम करे, वो भी भिखारी के सामने बोल रही है, आज भिखारी को बोला कल समाज वालों को कहेगी, ये तो हमारी बदनामी है, ऐसी लड़की हमें नहीं चाहिए घर में जो हमें ही बदनाम करे। तो उसने अपने समधी को फोन किया, आप अपनी लड़की को ले जाओ, हमको ऐसी लड़की नहीं चाहिए। अब बाप बड़ा परेशान कि मेरी लड़की इतनी समझदार है, वो ऐसा वैसा कभी बोल नहीं सकती। तो बाप ने सोचा, अभी लेके तो नहीं आ सकता हूं मैं, लेकिन जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, उस गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। गांव के पंचों के पास गया पिता और कहने लगा, आप सब तो मेरी बेटी को जानते हो, वो इतनी अकलमंद है, समझदार है, लेकिन समधी जी का ये फोन आया तो सारे गांव के बुजुर्गों ने कहा कि लड़की तो इतनी समझदार है, वो ऐसा वैसा तो कभी बोल नहीं सकती है। ऐसा करते सेठ जी को बुलाते हैं, पूछते हैं भाई क्या बात है। सेठ जी को बुलाया, सेठ जी ने कहा, कह रहे भिखारी आया, उसको कहती है बासी खाना खा रहे, कल उपवास करेंगे। आज भिखारी को कहा, कल समाज वालों, किस दिन हमने बासी खाना खिलाया उसको, किस दिन उसको उपवास करने के लिए कहा, ये झूठ क्यों बोल रही है। तो कहा लड़की कोई बुलाते हैं उसको पूछते हैं उसने ऐसा क्यों कहा। लड़की को बुलाया, बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके उसने कहा, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहती हूं, लेकिन हमारे घर का कायदा है दान नहीं करना है। और वो भिखारी आया तो उसने कहा मैं 3 जन्म का भूखा हूं, उसके जवाब में मैंने ये बात कही है। तो कहा 3 जन्म का भूखा मतलब, तो कहा वो भिखारी कहना चाह रहा था कि पिछले जन्म में उसके पास होगा लेकिन उसने दान नहीं किया तो भिखारी बना। अब जब भिखारी बना कुछ है ही नहीं तो क्या दान करेगा, तो आगे का जन्म भी भिखारी का ही होगा। तो इसलिए वो कहना चाह रहा था कुछ ऐसा दे दो ताकि मैं भी दान करके कम से कम थोड़ा पुण्य तो अर्जित करूं, ताकि आगे का जन्म मेरा मैं संवार सकूं। वो ये कहना चाह रहा था। अब हमारे घर में भी ये नियम है कि दान नहीं करना है, ससुर जी का ये नियम है। तो मैंने उसको कह दिया, ये जो हवेली देख रहा है तुम, ये पिछले अच्छे जन्मों का पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल है, तो बासी खाना खा रहे हैं लेकिन इस जन्म में हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आगे का जन्म हमें भी उपवास ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा कि जीवन के अंदर कम से कम ऐसे कर्म करो जो आगे के जन्म को भी हम संवार सके। जिन बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए हम कर रहे हैं और पाप कर्म कर रहे हैं, उसका फल वो भोगने वाले नहीं है। भोगने के समय तो हमें अकेले को ही भोगना पड़ेगा। तो आने वाले जन्म को संवार रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? अज्ञानता के कारण, अज्ञानता ही कहेंगे, अज्ञानता के कारण वो अपने आप में देखना है। इसलिए कहा ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। ये एक भावनात्मक सत्य है कि इस भावना को लेकर चलो जीवन के अंदर, तो कभी कोई गलत काम नहीं होगा। ईश्वर हमारे साथ है, न डर होगा न गलत कर्म होगा। इसलिए ये बात शास्त्रों में कही गई थी। और आगे जाए जी, क्या हुआ, आप आगे जाओ। हाँ, संघ का रंग, संघ का रंग क्यों नहीं असर करता है? आप क्या बोल रहे हैं, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। हाँ, वो बराबर है। भावार्थ ये है कि जीवन भी कांटों से भरपूर है, परिस्थितियां हैं, समस्या है, लेकिन फिर भी हमें कांटा नहीं बनना है, फूल ही बनना है। ये प्रकृति हमें सिखा रही है ना। हर चीज के पीछे भाव है, उस भाव को समझना होता है कि जीवन की वास्तविकता का वो दर्शन है। संघ की बात नहीं है कि आप भले ऐसे लोगों के संग में रहो लेकिन क्या फूल बनकर रह सकते हैं वो, या टिट फॉर टैट का जमाना आ गया है, क्या कर रहे हैं ये हमें सोचना है कि मुझे कांटा बनना है या मुझे फूल बनना है। ठीक है, जीवन में परिस्थितियां तो कांटों जैसी आएगी, लेकिन उन कांटों जैसी परिस्थिति में भी तो रहना तो संग में ही है, उन कांटों के बीच में ही रहना है, लेकिन फिर भी क्या फूल बनकर रह सकते या खुद भी कांटा बन जाएंगे? ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है। बाकी संघ का असर क्यों नहीं करते? आज पशु पक्षी के ऊपर भी करता है। एक शिकारी दो तोता पकड़ कर ले आया जंगल से, बाजार में बेचने बैठा। एक तोते को एक महात्मा अपने आश्रम पर ले गए, दूसरे तोते को एक बदमाश अपने अड्डे पर ले गया। थोड़े ही दिन में देखा गया कि जो तोता महात्मा के आश्रम पर गया था राम राम बोल रहा था, और जो तोता बदमाश के अड्डे पर गया था सुबह सुबह गालियां बोल रहा था। संघ का रंग, जीवन दर्शन अलग चीज है और संघ अलग चीज है। कांटों और फूल का कभी संघ नहीं हो सकता है। वो जीवन दर्शन है कि जीवन में कांटे भी हैं। ये भगवान प्रकृति के माध्यम से कुछ सिखाना चाहता है। कांटे भी हैं, लेकिन फिर भी उसमें फूल बन करके रहना है। तो जीवन दर्शन अलग चीज है और संगत अलग चीज है कि आप बुरे से बुरे संग में भी अपने आप को बचा के रख सकते हैं अगर जीवन दर्शन को समझा होगा तो। लेकिन नहीं समझा होगा तो खुद भी कांटे बन जाएंगे। जैसे दुनिया में कहावत है टिट फॉर टैट, जो करेगा हमें भी वैसा ही करना है। वो कांटे बन गए, लेकिन जिसने जीवन दर्शन को समझा है, प्रकृति से भी हमने कुछ सीखना है, जिसने सीख लिया वो तर गया, जिसने नहीं सीखा वो मर गया, डूब गया। अब आपको क्या करना है ये आपके ऊपर है, क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी है कि मुझे कांटा बनना है या फूल बनना है। हर इंसान को एक बुद्धि है, एक बच्चे के अंदर भी बुद्धि है। तो आपको क्या करना है, आपके विवेक को यूज करना है। कांटे और फूल में वो बुद्धि नहीं है, लेकिन आप में तो है, आप में तो रखा है ना भगवान ने। आपको क्या करना है, तो जीवन दर्शन को समझना है कि ये प्रकृति में भी जो बातें लेसन्स ईश्वर ने हमको देना चाहा, वो लेसन्स कम से कम सीख ले तो तर जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे ऐसे ही। और जीवन में कुछ बोध लेंगे ही नहीं तो क्या होगा? तो बोध लेना तो मनुष्य का काम है ना, कि बोध लेना ही नहीं है, कि किसी ने हमें एग्जाम्पल दे दिया इसलिए वो एग्जाम्पल को मैंने पकड़ लिया कि कांटे और फूल की संगत कभी होती नहीं है, इसलिए मैंने भी पकड़ लिया कि बस जीवन के अंदर अगर कांटे जैसे लोग हैं तो उसके साथ में मुझे फूल बनना तो आता नहीं है, इसलिए मैं भी कांटा ही बन करके रहूं, फूलों को चुभोते रहे हम, यही हमारा कर्तव्य है। क्या ये जीवन दर्शन लिया? ये जीवन दर्शन लिया हमने? हमने क्या सीखना है? ये हमारे विवेक से काम लेना है, राइट? ठीक है, इसलिए कोई ने एग्जाम्पल दिया उसको पकड़ करके चलो नहीं, विवेक को यूज करो और उस विवेक के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करना है, ये हमारे ऊपर है। पांचवी बात जो कहा गया, नाम रूप से न्यारा है, ना नाम है ना रूप है ना कोई आकार है। संसार के अंदर कोई भी चीज नाम रूप आकार बिना है? हवा जो दिखाई नहीं देती है उसका भी नाम है। और एक चित्रकार जब चित्र निकालता है तो चक्रवात तूफान अगर उसको दिखाना है, तेज हवा है, दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है? तेज हवा भी दिखा देता है। तो शांत प्रकृति दिखाना है वो भी दिखा सकता है, कि जैसे हवा चल ही नहीं रही, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, पूरा प्रतिबिंब तालाब के अंदर दिखा देता है। जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार आकार दे देता है। तो नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है? है नहीं। तो क्या स्वयं ईश्वर नाम रूप आकार बिना हो सकता है? नहीं, उसका भी है। तो वो कौन सा नाम रूप आकार है तो जिस तरह एक पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति पुंज। इसीलिए व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है। तो आत्मा अगर ज्योति स्वरूप है तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो भी ज्योति पुंज है। जिसकी पूजा भारत में शिवलिंग या ज्योतिर्लिंगम के रूप में की गई है, ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति की आकृति। ज्योति की पूजा कैसे करें, इसलिए भारतवासियों ने एक आकृति दे दी जिस पर वो अपनी भावनाओं को जाकर अर्पित करते हैं और नाम दिया सदा शिव, यानी जो सदा कल्याण करने वाला है, कल्याणकारी है। शिव माना परम पवित्र, शिव माना शांति, गुणवाचक नाम है, कर्तव्यवाचक नाम है। आज मनुष्य का नाम गुणवाचक नहीं है, किसी का नाम होगा शांति भाई लेकिन जीवन में टेंशन ही टेंशन होगा, शांति नाम की नहीं होगी। किसी का नाम होगा अमीर चंद, होगा फकीर चंद। किसी का नाम होगा त्रिभुवन दास, त्रिभुवन और झोंपड़ा भी नहीं है और त्रिभुवन है ना। तो मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं है, परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है। और इसलिए भारत भर में द्वादश ज्योतिर्लिंगम है जो आज भी महान तीर्थ स्थान माने जाते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। नॉर्थ में चले जाओ अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, साउथ में चले जाओ रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है, ईस्ट में चले जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है और वेस्ट में चले जाओ सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। भारत से बाहर नेपाल जाओ तो पशुपतिनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई। नॉर्थ में जाएंगे श्री राम श्री कृष्ण की पूजा ज्यादा मिलेगी, साउथ में चले जाओ श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी, तो कलकत्ता चले जाओ काली पूजा दुर्गा पूजा मिलेगी, तो गुजरात महाराष्ट्र में जाओ गणेश पूजा मिलेगी, तो तमिलनाडु में जाओ मुरुगन की पूजा मिलेगी, तो राजस्थान में जाओ रामदेवरा जी की पूजा मिलेगी। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में है। भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो। इसीलिए उसको कहा देवों का भी देव महादेव, जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी की। और शिव का जब मंदिर बनाते हैं ना, तो शिवलिंग को कभी द्वार से नहीं लाया जाता है। भक्ति में भी देखो कितना सुंदर यादगार है कि शिवलिंग को कभी द्वार से नहीं लाया जाता, बाकी सभी देवी देवताओं की मूर्तियां द्वार से आती है, लेकिन शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा जब होती है तो कैसे लाते हैं? ऊपर से उतारा जाता है, ऊपर का गुंबज नहीं लगाते, ऊपर से उतारा जाता है। कि परमात्मा एक ही है जो अवतरित होता है, किसी माँ के गर्भ से संसार में नहीं आता है। कितना सुंदर यादगार है, लेकिन किसी ने न समझाया न हमने कभी समझा कि भाई एक शिवलिंग को ही ऊपर से क्यों उतारा जाता है। क्योंकि देवों का भी देव वही है। रामेश्वरम में श्री राम ने जिसकी पूजा की, अब अगर राम भगवान थे तो उन्होंने शिव की पूजा क्यों किया? सोचने की बात है। क्योंकि स्वयं श्री राम भी बहुत अच्छे से जानते थे कि जिसके सामने मैं युद्ध करने जा रहा हूं रावण, जिसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वो ऐसे ही घमंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शक्ति स्वयं रावण की भी नहीं है। रावण ने भी वो शक्ति कहां से प्राप्त की थी? शिव भक्त था तभी तो भोलेनाथ कहा, इतना भोला जो रावण ने याद किया उसको भी शक्ति दे दी, श्री राम ने याद किया उसको भी शक्ति दे दी। वृंदावन में चले जाओ, गोपेश्वर मंदिर मिलेगा, जहां दिखाते बचपन से श्री कृष्ण ने गोपों के साथ मिलकर के शिव की पूजा की। कुरुक्षेत्र में भी दिखाते हैं कि महाभारत के युद्ध के पहले स्वयं श्री कृष्ण ने शिव की पूजा की, साणेश्वर की पूजा की, पांडवों से भी कराई, अगर श्री कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने अपनी पूजा क्यों नहीं करवाई, महादेव की पूजा क्यों करवाई और फिर हर हर महादेव करके युद्ध आरंभ हुआ। जिन देवियों की पूजा करते ये देवियां कौन है, तो कैसे कहते हैं असुर संहारने शिव शक्तियां, असुरों का संहार करने वाली शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां। तो जो देवों का भी देव देवियों का भी देव वो है महादेव। लेकिन यहाँ भारतवासी एक गलती जरूर करते जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते, जहाँ दोनों का नाम अलग है शिव और शंकर, आइडेंटिटी ही अलग है, एक है ज्योतिर्लिंगम एक है आकारी देव पुरुष, ऑक्यूपेशन अलग, शिव को कहा भोलेनाथ कल्याण करने वाले और शंकर के लिए कहा तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश होता है, नाम अलग आइडेंटिटी अलग ऑक्यूपेशन अलग, फिर एक कैसे हो सकता है। जब भी कोई मंत्र देता है ओम नमः शिवाय का मंत्र देता है, कभी ओम नमः शंकराय जपा, एक है तो जपना चाहिए, क्यों नहीं जपते हैं। भारत में शिवरात्रि मनाई जाती है उसको शंकर रात्रि कहा, क्यों नहीं कहते हैं महाशिवरात्रि, शंकर रात्रि तो नहीं कहा महाशंकर रात्रि, क्यों नहीं कहते हैं, एक है तो कहना चाहिए। शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाया, किसका ध्यान कर रहे हैं, अगर वही भगवान है तो उसको ध्यान करने की क्या जरूरत थी, कोई आवश्यकता है। शंकर को पूरा परिवार सहित दिखाते हैं, माँ पार्वती है गणेश जी है कार्तिक है दो बच्चे हैं, पूरा परिवार है और पूरा परिवार मिलकर के शिव की पूजा कर रहे हैं। अगर एक ही है तो शिवलिंग की पूजा क्यों करते, फिर शंकर की पूजा करते थे ना, वो गृहस्थ रूप में दिखाए उनको, आदर्श बने कि गृहस्थ धर्म में भी आप परमात्मा को याद करो, व्यक्ति को नहीं, ये प्रत्यक्ष अपने जीवन से समझाना चाह। ध्यान किया कैलाश पर्वत पर, कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है, वहां बैठकर शंकर ने भी ध्यान किया, क्यों किया, क्योंकि उनको महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ था, आंख खोलते ही महाविनाश होना चाहिए, तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब ये कार्य कर सके, इसलिए इतने सालों ध्यान करके उस शक्ति को प्राप्त किया, हासिल किया एकाग्रता से, और तब जब समय आया अधर्म बढ़ गए तो आंख खोलते ही महाविनाश महाप्रलय कर दिया। ये तो हुई भारत वालों की बात, भारत से बाहर चले इस्लाम धर्म में जहां मूर्ति पूजा नहीं है, मक्का में जब जाते हैं लोग हज करने के लिए, वहां काबा का पवित्र पत्थर है और ये पवित्र पत्थर के पीछे कहानी है, क्या कहानी है कि पहले मक्का में 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी जिनको वो अल्लाह मानते थे, परंतु मोहम्मद पैगंबर साहब जब आए तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है, ये सब अल्लाह नहीं है, काफी मतभेद लड़ाई झगड़ा हुआ, उसको मदीना भेज दिया, वहां जाकर के ये प्रचार करो, यहां नहीं, वहां प्रचार चलता रहा अल्लाह एक है अल्लाह एक है। जब काफी मात्रा में लोग जुड़ गए फिर मक्का आए अल्लाह एक है, काफी लड़ाई झगड़ा हुआ तब कहा जाता है एक आकाशवाणी हुई, आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो, और ऊपर से वो पत्थर गिरा था जिसकी स्थापना स्वयं मोहम्मद पैगंबर साहब ने मक्का में की, और तब से लेकर के ये मान्यता हुई कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तब जीवन सफल हुआ, इसलिए हर साल उनकी हज यात्राएं निकलती है। हज में भी हर कोई नहीं जा सकता, हज में जाने के नियम बहुत कड़े हैं, लेकिन जो हज में जाता है वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है, शैतान को पत्थर मारता है और फिर अपनी बंदगी में अंत में कहता है कि हे परवरदिगार, परमेश्वर को कहा हे परवरदिगार, नूरे इलाही मेरा हज कबूल हो तब उनका हज कबूल होता है। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है। नूर माना तेज प्रकाश, ज्योति माना तेज प्रकाश। हिंदुओं ने ज्योति कहा और ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा, उन्होंने नूर कहा और काबा के रूप में याद किया। बात एक ही है या अलग है? एक ही है अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए यहूदियों में कहा जाता कि मोसेस जब माउंटेन पर गए जहां उन्हें 10 कमांडमेंट्स मिले, उस समय उन्हें अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिसको देख करके मोसेस ने कहा यहोवा यानी द सुप्रीम लाइट। और इसीलिए जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा ये कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। तभी तो उसको जब क्रॉस पर चढ़ाया उस वक्त भी अपनी अंतिम प्रार्थना में उसने भगवान से यही कहा कि प्रभु आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उन्हें पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। आज भी अगर वेटिकन चले जाओ रोम में, जो सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, जहां पोप की गद्दी है, उस वेटिकन के अंदर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, लेकिन अखंड ज्योति स्वरूप निराकार लाइट का ही सिंबल मिलेगा, जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाएं, गुरु नानक देव ने बड़े स्पष्ट शब्दों में उसकी महिमा गाई है, जितना स्पष्ट और किसी ने नहीं किया। एक ओमकार निराकार निर्वैर सतनाम अकाल मूल, कितना सुंदर तरीके से एक एक बात को स्पष्ट किया है। निराकार है, निर्वैर है, वही एक सत्य नाम है जिसको काल कभी नहीं खा सकता, काल मूर्त है। इसीलिए दिखाते कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, लेकिन ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? आज भी जैनी लोग जब दिवाली के दिन महावीर स्वामी का निर्वाण दिन मनाते हैं, उस वक्त अपनी प्रार्थना में यही गाते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया वो गति हमें भी प्राप्त हो। शिव धाम कौन सा है? वो शिव कौन है? और उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने के लिए तीन बातें बताते, ज्ञान दर्शन चरित्र। ज्ञान के दिव्य चक्षु प्राप्त हो तो जीवन दर्शन में या शास्त्र के दर्शन में जो बातें लिखी है उसको आचरण में इंसान लाए, और चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए तभी उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर सकते हैं। और आगे जाए, महात्मा बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया, लेकिन वो भी ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? आज भी जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, जिसको करनी का पवित्र पत्थर कहते हैं, जिसका नाम है चिंकोन शेकी। चिंकोन शेकी का मतलब है शांति का दाता, जिसका ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। और आगे जाए, पारसी धर्म में अखंड ज्योति स्वरूप, इसलिए उसके मंदिर को कहा ही जाता है द फायर टेम्पल। तो पहली कसौटी, सर्व धर्म मान्य कौन है? कौन है? देवों का देव, जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी की, जिसको ही गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा, वाहेगुरु कहा। साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक। साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जो रास्ता दर्शाया उसको हमने पकड़ा नहीं और हमने उसी को पकड़ लिया। अरे वो भगवान नहीं है, वो खुद कहता है सबका मालिक एक है, उसको याद करो। तो हमने क्या किया? कितनी अंधश्रद्धा और अंधविश्वास के पीछे जा रहे हैं, जबकि क्योंकि हर धर्म में एक ही मान्यता है। आज आपको कोई चाचा कहे, मामा कहे, भाई कहे, पिताजी कहे, हर बार स्वरूप बदली हो जाएगा, ये एक ही रहेगा, एक ही रहेगा ना। तो गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, हरि कहा, मालिक कहा, वाहेगुरु, स्वरूप तो एक ही है हर धर्म में, ये अलग अलग है, तो फिर उसके नाम पर इतना झगड़ा क्यों कर रहे हैं, है ना। दूसरी कसौटी सर्वोच्च शक्ति, इसीलिए सबने ऊपर वाला कहा, ऊपर की ओर अंगुली दिखाई, और शिव के साथ इसीलिए एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभू। शंभू का मतलब है स्वयंभू, स्वयंभू माना जो स्वयं प्रकट हुआ, उसको उत्पन्न करने वाला कोई माता पिता नहीं है, माता पिता नहीं है, स्वयंभू है, स्वयं अवतरित होकर के इस संसार में आते हैं, जो सभी चक्रों से पर है, न जन्म है न मृत्यु है, इसीलिए उनको महाकालेश्वर, महाकाल, जिसकी खुद की मृत्यु नहीं है लेकिन जो महाकाल जरूर है, अजन्मा, अकाल मूरत, तो न जन्म न मृत्यु इस चक्र में नहीं आते हैं। जब जन्म और मृत्यु नहीं है तो देह भी नहीं है, न देह के संबंध है, जब देह ही नहीं है तो कर्म भी नहीं है, तो अकर्ता अभोक्ता, और अकर्ता भोगता है तो न पाप और पुण्य है और न सुख और दुख है, इसलिए उसको हरि कहा कि जो दुख है वो भी हर लो और सुख दे, क्योंकि वही एक है जो सुख देकर दुख हरने वाला है। लेकिन पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, इसलिए शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानता है, बीच में एक आंख होती है भावार के, मनुष्य को ज्ञान के दिव्य चक्षु देने वाला, दिव्य चक्षु विधाता वही है जिससे मनुष्य कल्याण का दर्शन कर सके। और उसकी पूजा में तीन पत्र का बेल पत्र चढ़ता है, जो डंडी के साथ जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होने चाहिए, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, त्रिदेव है, इसलिए ये तीनों देवताओं का भी जन्म नहीं दिखाते लेकिन उनकी उत्पत्ति है। परमात्मा अवतरित है लेकिन ये तीन देवताओं की उत्पत्ति है, कहां से उत्पन्न हुए, तो कहा जाता प्रकाश से उत्पन्न हुए, या शास्त्रों के अनुसार या ओम से उत्पत्ति हुई, ओम की ध्वनि से या प्रकाश से उनकी उत्पत्ति दिखाते हैं। इसलिए ये तीनों देवताओं का भी गायन हर धर्म में मिलेगा, हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश कहा, तो इस्लाम धर्म में जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल कहते हैं, तो क्रिश्चियन धर्म में द थ्री होली स्पिरिट्स, जीओडी, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, इसलिए परमात्मा को वो कहते हैं गॉड फादर, फादर ऑफ जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, किसके फादर हैं, तो ये तीनों देवताओं के भी फादर वही है। तो गुरु नानक देव ने कहा, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान, तो हर धर्म में ये तीनों मूर्तियों का भी गायन जरूर है परमात्मा के साथ, कर्तव्य। लेकिन यहां एक भारतवासी, इसीलिए परमात्मा को कहा सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन यहां भारतवासियों को एक प्रश्न जरूर होता है कि शास्त्र में जो ब्रह्मा का वर्णन आता है और यहाँ जो ब्रह्मा दिखाया है, इसको ब्रह्मा क्यों कहा जाता है? शास्त्र में जो ब्रह्मा दिखाया, चार मुखधारी, सहस्त्र भुजाधारी, और भुजाओं में भी सारे शास्त्र दिखाए, वेद दिखाए, पुराण दिखाए, उपनिषद दिखाए। कमल आसनधारी प्रैक्टिकल अगर देखा जाए, कमल के ऊपर कोई बैठ सकता है या कोई प्रतीकात्मक है, किसी बात का प्रतीक है? आज की दुनिया में कोई बच्चा दो मुंह वाला भी पैदा हो जाए तो कहते हैं एबनॉर्मल चाइल्ड। ब्रह्मा को चार मुख दिखाए तो भी एबनॉर्मल नहीं कहा, ये भी प्रतीकात्मक है। ब्रह्मा को शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत थी, ये भी प्रतीकात्मक है। तो क्या प्रतीकात्मक है कि कहा जाता कि जब संसार पर अधर्म बढ़ गया और परमात्मा को ही संसार में आना था, तो पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर जब इस संसार में अवतरित होता है तो किस रूप में अवतरित होगा? तो एक साधारण मनुष्य तन के अंदर पर काया प्रवेश करते, संसारी था वो, इसलिए गुरु नानक देव ने कहा संसारी, एक संसारी। सत्यनारायण की कथा में भी बूढ़ा ब्राह्मण के रूप में आया। तो एक संसारी बूढ़ा ब्राह्मण जो था उसमें पर काया प्रवेश, गीता के सातवें अध्याय में इसलिए कहा कि मैं अति साधारण रूप में आता हूं जिस कारण मूढ़मति मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते, कोटों में कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण करते हैं। और सबसे पहले ईश्वर ने आकर क्या किया, इसलिए उसका नाम दिया ब्रह्मा। पार ब्रह्म में रहने वाले ईश्वर ने उसके तन का आधार लिया जो इस संसार में था, एक संसार ही था। और फिर सबसे पहले क्या किया, तो उस समय संसार कीचड़ जैसा था तो उस कीचड़ में कमल को खिलाया, इसलिए कमल आसनधारी बनाया। और फिर क्या किया, तो सभी शास्त्रों का निचोड़ सुनाया, किसको? संसार के लोगों को ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान? कोई एक शास्त्र पढ़कर नहीं, लेकिन सभी शास्त्रों का निचोड़, इसलिए उसके हाथ में सारे शास्त्र दिखाए। और किसको दिया, तो खाली हिंदू धर्म वालों को नहीं, सारे संसार की आत्माओं को। तो सारा संसार कैसे दिखाए, तो चार दिशा में चार मुख है कि वो ज्ञान जो प्रवाहित हुआ संसार की चारों दिशा में फैला, सभी मनुष्य के लिए, सभी धर्म वालों के लिए था। तो जो कार्य परमात्मा इस समय आकर कर रहे, जिसका यादगार शास्त्रों में ब्रह्मा के रूप में दिया हुआ है कि सृष्टि की सर्जना कैसे करते हैं, एक नए विश्व की सर्जना का कार्य कैसे करते हैं, तो ये विधि है। और सर्व गुणों में अनंत, ज्योमेट्री के अंदर बिंदु की व्याख्या है अनंत, इन्फिनिट। तो परमात्मा सर्व गुणों में अनंत है। और विज्ञान में सबसे सूक्ष्म अणु को माना जाता है, इसीलिए गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने कहा मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु से भी सूक्ष्म हूं, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप अशरीरी हूं। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय लेते हैं ना, तो पांच बातें पूछते हैं, आपका नाम क्या है, फिर आइडेंटिटी चाहिए वही है या दूसरा, फिर क्वालिफिकेशन चाहिए, चौथा एड्रेस चाहिए, और पांचवा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। ये पांच बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता है। तो आज परमात्मा का परिचय भी ये पांचों बातों के आधार पर हमने देखा कि जिसका नाम सदा शिव, यहोवा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, मालिक, हरि, वाहे गुरु, चिंकोन शेकी, सिद्ध शिलापति, जो भी कहो, है ना, अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम दिए गए हैं, है वो एक ही, जिसका स्वरूप अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप प्रकाश नूर लाइट अखंड ज्योति स्वरूप निराकार, जिसका कोई फिजिकल आकार नहीं है। और उसके क्वालिफिकेशन वो पांच बातें, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान। और उसका एड्रेस पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, जो परमधाम का वासी है, मोक्ष धाम, किसी ने रूहानी दुनिया कहा, किसी ने सचखंड कहा, किसी ने हाईएस्ट हेवनली अबोर्ड कहा, तो किसी ने सातवां आसमान कहा, है उस धाम का अलग अलग नाम, किसी ने निर्वाण कहा। और ऑक्यूपेशन, परमात्मा का प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है, यदा यदा ही धर्मस्य, अधर्म जो इतना बढ़ गया उस अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करना, ये परमात्मा का दिव्य कर्तव्य है। तो अब तो अगर आपका बच्चा या आपका पोता आपसे पूछे कि ये सभी भगवानों का हेड कौन है, अब तो बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं? हाँ, नो कंफ्यूजन, सारी कंफ्यूजन समाप्त, अब तो अपना मन लगा सकते हैं। आज तक एक शिकायत थी, मन भगवान में नहीं लगता है, क्योंकि कहाँ लगाना यही मालूम नहीं था। अब तो लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा तो अब तो बैटरी चार्ज कर सकेंगे ना। तो चले थोड़ी देर, तो चलिए थोड़ी देर ईश्वर के ध्यान में अपने मन को लगाते हैं। स्वरूप स्पष्ट हुआ, अब कोई कंफ्यूजन नहीं, अब ध्यान लगाना आसान है। उस दिव्य स्वरूप पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र करना है। एक बहुत सुंदर गीत बजेगा, उसके भाव में अपने मन को ले चलना है।